सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिणेणमिं वेयणमहाहियारम् विविहियारम् परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये दसवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना अनुयोग द्वार में अभी हम पृष्ठ संख्या 132 पर आ गए, 132। ये अंतिम पैराग्राफ अभी हम पढ़ेंगे यहाँ। अब यहाँ अंतिम गुणहानी के द्रव्य के अपनयन क्रम को कहते हैं। एक समय प्रबद्ध की जो निषेक रचना होती है उसकी बात यहाँ चल रही है। देखो यह था, कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि मात्र अंतिम निषेकों का, यदि एक प्रथम निषेक प्राप्त होता है तो अंतिम गुणहानी के द्रव्य के कुछ कम डेढ़ गुणहानी मात्र अंतिम निषेकों में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार ये त्रैराशिक लिखते हैं, क्या लिखा पहले कि कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि और उतने अंतिम द्रव्य। अन्योन्य अभ्यस्त राशि यहाँ 64 है, कुछ कम में वहाँ अंतिम निषेक हमने 9 का देखा है, उसमें कुछ कम करना। तो उसका यदि एक प्रथम निषेक प्राप्त होता है, प्रथम निषेक यानी 512 वाला, तो अंतिम गुणहानी के द्रव्य के कुछ कम डेढ़ गुणहानी मात्र अंतिम निषेकों में, अंतिम गुणहानि का जो पूरा द्रव्य है उसमें कुछ कम अंतिम निषेकों में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार सदृश का अपनयन करके कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि से एक का असंख्यातवा भाग कम डेढ़ गुणहानि को भाजित करने पर एक का असंख्यातवा भाग आता है। क्योंकि डेढ़ गुणहानी से मोहनीय की अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। ये संदृष्टि में बताएंगे तो पता चलेगा अपने को अंकों में। हा? इस प्रथम निषेक के असंख्यातवे भाग को, इस स के ऊपर बिंदी लगाना, असंख्यातवे भाग को प्रथम निषेक के अर्ध भाग में से कम कर देने पर मोहनीय के साधिक डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेक होते हैं। कम किया गया एक का असंख्यातवा भाग संदृष्टि में यह है, यानी 25/128, इसको सार्ध डेढ़ गुणहानि में से कम कर देने पर शेष रहता है 1575/128। कुछ अधिक डेढ़ गुणहानि में से इसको कम कर दिया। अब ये फिर से बोलो, अपनयन करना यानी बाद करना। उदाहरण ये तो हम देखते हैं ना, त्रैराशिक में ऊपर और नीचे सेम सेम राशि है तो भी उसका एकमेक में बाद कर देते हैं उसको। उदाहरण, कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि 512/9, ये कुछ कम का है तो हमारी 64, परंतु यहाँ समझाने के लिए जो फिगर्स लिए हैं 512:9 अंतिम गुनहानी की अपेक्षा कुछ कम डेढ़ गुनहानी 100:9 कुछ कम डेढ़ गुनहानी की बात की ना, 12 के बदले 11 पूर्णांक 1 नमोज। ये तो फिगर्स बराबर आने के लिए उन्होंने बता दिया। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये पहले वाला फिर पढ़ते जो जहां हमने यथा से पढ़ा था ना, विथ दिस फिगर्स इन माइंड। कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि मात्र अंतिम निषेकों का, अंतिम निषेक कितने लेने, कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि मात्र अंतिम निषेक लेने। यदि एक प्रथम निषेक प्राप्त होता है, कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि उन्होंने 512:9 ली और इतने अंतिम निषेक ने मल्टीप्लाइड बाय 9 लिया, तो उसका एक निषेक ने 512 प्राप्त होता है। ख्याल है ना, यहाँ वो उतने अंतिम निषेक अन्योन्य अभ्यस्त राशि मात्र, कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि 512:9 मात्र अंतिम निषेक 9। यदि एक प्रथम निषेक प्राप्त होता है यानी 512:9 गुना 9 उसकी संख्या आती है 512, बराबर है ना। 512:9 × 9 9 9 निकल गए तो 512 हो गए, तो उसका एक प्रथम निषेक प्राप्त होता है, पूरे पूरे निषेक रचना का पहला निषेक 512 वाला। अब आगे की पढ़ेंगे तीसरी लाइन, तो अंतिम गुणहानि के द्रव्य के कुछ कम डेढ़ गुणहानि मात्र, ये उन्होंने फिगर कितनी ली 100:9 और कुछ कम डेढ़ गुणहानि मात्र अंतिम निषेक यानी फिर 9, उसमें क्या प्राप्त होगा, तो उसमें 100:9 गुना 9 वो 100 आ जाएगी। हाँ, डेढ़ गुणहानि नहीं, अंतिम गुणहानि के द्रव्य के वहां अन्योन्य अभ्यस्त राशि नहीं लेना है, अंतिम गुणहानि के द्रव्य के कुछ कम डेढ़ गुणहानि मात्र अंतिम निषेकों में क्या प्राप्त होगा, 100 आ गए। इस प्रकार सदृश का अपनयन करके कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि से एक का असंख्यातवा भाग कम डेढ़ गुणहानि को भाजित करने पर एक का असंख्यातवा भाग आता है। ये जो हमने पहले पढ़ा था, अभी यह उदाहरण में फिर देखते हैं। देखो उन्होंने यहाँ उदाहरण जहाँ लिखा है उसमें कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि बता दी 512:9, अंतिम गुणहानि की अपेक्षा कुछ कम डेढ़ गुणहानि 100:9, वहां जो लिखा था ना अंतिम गुणहानि के द्रव्य के गुणहानि उसकी अपेक्षा से वो कुछ कम डेढ़ गुणहानि बताई थी। अब यहाँ त्रैराशिक के बाद ये उन्होंने लिख दिया, यानी 512:9 / 9 उसमें एक, यानी अपनी सिंपल लैंग्वेज में 512 में जो एक प्राप्त होता है तो 100 में कितने प्राप्त हो गए। सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको तो उसको 100/512 आ जाएगा। उसको 4 से हम दोनों ओर ऊपर और नीचे करेंगे गणित। देखो अपना क्या आया था, कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि से अंतिम निषेक को गुणा करने पर एक प्रथम निषेक आता है, एक प्रथम निषेक आता है ना, यानी अपनी भाषा में 512 का एक प्रथम निषेक आता है। तो अभी अंतिम गुणहानि के जो डेढ़ गुणहानि है, कुछ कम डेढ़ गुणहानि, 100/9 उतने अंतिम निषेक, यानी उसकी वैल्यू 100 ही हो जाएगी। तो 512 में एक प्रथम निषेक होता है, तो 100 में प्रथम निषेक कितने होते, तो 100/512, 4 का भाग देंगे दोनों ओर, तो 25/128 आ गए। यही लिखा नहीं है, 25/128। अब उसके आगे का प्रोसेस क्या बताया था, फिर ऊपर हम पढ़ेंगे दूसरी लाइन में। इस प्रथम निषेक के असंख्यातवे भाग को, 128 जो आया है वो प्रथम निषेक का असंख्यातवा भाग है, उसको प्रथम निषेक के अर्ध भाग में से कम कर देने पर, प्रथम निषेक का आधा भाग, यहां 256 में से डायरेक्ट 128 नहीं निकालना, प्रथम निषेक, ये तो अपने मानी हुई फिगर से ना, प्रथम निषेक का आधा भाग यानी 1/2, उसमें से 25/128 कम करेंगे। फिर पढ़ती हूँ इसको। इस प्रथम निषेक के असंख्यातवे भाग को, यानी जो उत्तर आया था अभी अपना, उसको प्रथम निषेक के अर्ध भाग में से कम कर देने पर मोहनीय के साधिक डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेक होते हैं। तो वो नीचे उसको सुलझाए, देखो आधे में से 25/128 माइनस कर दिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 के बदले यहाँ ये 64 गुना हुआ ना, छेद समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 64-25, हाँ नीचे 64 ऊपर 64 नीचे, हाँ 64-25 तो 39 आ गए, बराबर है ना, सादा गणित है। यहाँ 128 छेद है, यहाँ 2 छेद है, 2 की जगह 128 करने के लिए नीचे 64 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 64 से गुना करना पड़ेगा, 64 में से 25 गए, 39 रह गए। तो उसको क्या कहते हैं, डेढ़ गुने मात्र प्रथम निषेक होते, अर्ध में से कम कर देने पर मोहनीय के साधिक डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेक होते हैं। ये 12 तो थे ही डेढ़ गुणहानि वाले, 12 में इतना मिला देना, 39/128, ये साधिक है, एक्स्ट्रा वाला प्रमाण है। हाँ 12 पहले आया था ना, 12 तो डेढ़ गुणहानि 12 की है, पहले हम डेढ़ गुणहानि कहते थे, परंतु वो साधिक है, वो बताने के लिए साधिक का प्रमाण निकाला, ये कितना साधिक है, तो 12 में कितना मिलाना है, तो 39/128 मिलाना है, ये साधिक का प्रमाण हुआ। सब द्रव्य में इतने प्रथम निषेक होते हैं। अब आगे दो दिन कल का तो डबल लिया था, कल का तो बहुत आसान था, वो क्षेत्र की बात हमने देखी थी किस तरह से कर ये साधिक कितना करने, उसी के लिए उन्होंने ये संदृष्टि बताई है, यानी हमेशा टोटल द्रव्य को 5/12 इज इक्वल टू टोटल द्रव्य। प्रथम निषेक कैसा निकालना है, नहीं नहीं पूरे निषेक रचने का पहला निषेक कैसा निकालना, 512 है ना, पूरे द्रव्य को सादिक डेढ़ गुणहानि से भाग देंगे, यहाँ भाग देंगे तो वही प्रथम निषेक आएगा, या प्रथम निषेक को सादिक डेढ़ गुणहानि से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा द्रव्य आएगा, एक ही बात है। ये उसका आवहार निकाल रहे हैं ना हम। अब उसी को बताते हैं, ज्ञानावरणीय के प्रथम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य को अपहृत करने पर कुछ कम डेढ़ गुणहानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है, वह कैसे? ये तो कुछ कम की बात आई। हाँ, मोहनी की बात आई, वहां मोहनी की बात हुई थी। अब यहाँ ज्ञानावरण में कुछ कम की बात आई, वह कैसे? तो कहते हैं संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त सर्वसंक्लिष्ट वो उत्कृष्ट योग युक्त मिथ्यादृष्टि जीव 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थिति को बांधता हुआ उस समय में आए हुए कर्म परमाणुओं में से अंतिम गुणहानि के द्रव्य से अधिक अर्ध भाग को प्रथम गुणहानि में देता है। द्वितीय आदि गुणहानियों में म का मे करना, देखो, हमने एक समय में 6300 परमाणु देखे थे। प्रथम समय में कितने आए हुए कर्म परमाणु? 6300। अंतिम गुणहानि के द्रव्य से अधिक अर्ध भाग को प्रथम गुणहानि में देता है। अंतिम गुणहानि 100 + 3100 = 3200 प्रथम गुणहानि में दिया। क्या लाए ना? प्रथम गुणा देखो, अंतिम गुणहानि से अधिक अर्ध भाग प्रथम गुणहानि में देता है। वही पूरा 6300 का। हाँ, वही हम 6300 मानेंगे। अभी इन्होंने वो अंक संदृष्टि तो बाद में बताएंगे। द्वितीय आदि गुणहानियों में अंतिम गुणहानि के द्रव्य से हीन अर्ध भाग को देता है। द्वितीय आदि का अर्थ होता है दूसरे से लेकर अंतिम तक, वहां कितना द्रव्य दिया? तो 3100 दिया, इसमें 100 अधिक हुआ, उसमें 100 हीन हुआ। इसीलिए द्वितीय आदि गुणहानियों के द्रव्य में अंतिम गुणहानि के द्रव्य को मिलाने पर प्रथम गुणहानि के द्रव्य का प्रमाण होता है। ये तो हमने पहले भी देखा था। द्वितीयादि कहने दूसरे से लेकर अंत तक 3100 है, उसमें अंतिम 100 फिर दोबारा मिला देना तो 3200 हो जाता है, जो पहले अकेले एक गुणहानि में द्रव्य है। 3100 + 100। अब ये वही बात फिर ज्ञानावरणी पर घटा रहे। अब प्रथम गुणहानि के द्रव्य को प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर, अगला पेज 134 पृष्ठ, प्रथम गुणहानि के द्रव्य को प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर गुणहानि के 3/4 भाग मात्र प्रथम निषेक और प्रथम निषेक का 1/4 भाग प्राप्त होता है। ये तो हमने पहले भी देखा था कि पूरे द्रव्य को पहले निषेक से भाग देंगे तो कितने? 6 तो पूरे आएंगे और 1/4 होगा। तो गुणहानि के 3/4, गुणहानि है 8 की, उसका 3/4 होता है 6 और 3/4 मात्र प्रथम निषेक और प्रथम निषेक का 1/4 भाग प्राप्त होता है। यानी ये छः तो पूरे निषेक और एक निषेक का चतुर्थ भाग, उसकी संदृष्टि। हाँ, एक ये पहले हमने पूरा ही देखा था बहुत डिटेल में। हाँ, 123 पृष्ठ पर देखा था ना इसको। हाँ, वहाँ मोहनीय की बात पूरी बताई थी, अभी यहाँ ज्ञानावरणी की, उस पर ही घटाएंगे ऐसे। यानी यहाँ समझने में भी आसान है, हमने पहले देखा है पूरा। हाँ, तो इतना होता है, कितना करते हैं, द्वितीय आदि गुणहानियों के द्रव्य को भी प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर इतना ही होता है, 6.25 पूर्णांक 1/4। क्यों? क्योंकि हमने द्वितीय आदि में अंतिम गुणहानि का द्रव्य मिलाकर हिसाब किया है, 31 को 3100 के बदले 3200 मानकर ये बात की है, क्योंकि इसमें अंतिम गुणहानि का द्रव्य मिलाया गया है। पुनः दोनों ही चतुर्थ भागों को मिलाने पर डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेक होते हैं, यानी यहां के 6 और वहां के 6, 12 हो गए ना। हाँ, ये 3/4 भाग 3/4 भाग ऐसे दोनों ही चतुर्थ भागों को मिलाने पर डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेक होते हैं, 512 × 12। नहीं, 1/4 नहीं, 6 और 6 12 हो गए ना, वही डेढ़ गुणहानि है। आधी आधे को तो अभी हमने नहीं गिना है, और दोनों ही चतुर्थ भागों को मिलाने पर, ये दोनों ही 3/4 भाग चाहिए थे। एक मिनट, यहाँ ये गलत हुआ है, नीचे ऊपर देखो, वहां ऊपर से चौथी लाइन प्राकृत में पुनो दोवी तिन्नी चतु भाग्यसु मिला विदेशु, दोनों ही 3/4 भाग मिलाने पर। हाँ, दोनों 3/4 गुणहानि की 3/4 नहीं, 6 निषेक है ना। हाँ, बराबर है, दोनों जगह चतुर्थ भागों को लिखा है, वो गलत है, पहले वाक्य में वो गलत है। 3/4 भागों को मिलाने पर देखो ऊपर, हम पहले प्राकृत पढ़ेंगे, पुनो दोवी तिन्नी चतु भाग्यसु मिला विदेशु, ये 3/4 जो गुणहानि है, यानी उसकी संख्या 6 है, क्या होगा, दिवड गुणहानि मेत पढ़म निषेया होती, डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेक होंगे, 512 × 12 हो गए, वहां का 5 बराबर करना,
गुणहानि कितनी ली अपन ने,
8 की, ये गुणहानि के 3/4 लिए है। हिंदी में हमें करेक्शन करना है, और उसके लिए प्राकृत का रेफरेंस हम देख रहे हैं, तो यहां दोनों ही 3/4 भागों को मिलाने पर ऐसा करना, बीच में 3 शब्द डालना, मैं पढ़ी थी तभी मुझे जरा स्ट्राइक था कि कुछ गलत है यहाँ पर, ये ऐड करना। देखो अभी मैं करेक्टेड सेंटेंस पढ़ रही हूँ हिंदी में से, पुनः दोनों ही 3/4 भागों को मिलाने पर डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेक होते हैं, 3/4 और 3/4 डेढ़ हो गए ना, 6/4 ने डेढ़ हो गए, ये होते हैं 512 × 12। अब फिर ऊपर क्या लिखा है, दोवी चतुर्भागम मिलाविदे पढ़म निषेयस्य अद्धम होदी, और दोनों ही चतुर्थ भागों को मिलाने पर प्रथम निषेक का अर्ध भाग होता है, यानी आधी गुणहानि से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने 12 से गुणा किया था, ये प्रथम निषेक के प्रमाण से किया था ना, 6 और 6.25 कितने हो गए, 12.5 हो जाएगी, यानी पहले 12 अलग बता दिए, अब उसके आधे प्रथम निषेक के आधे हो जाएगी, 12 × 1/2। इस अर्ध भाग को डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेकों में मिलाने पर इतना होता है 500 गुणा 12 गुणा 25 द्वितीयांश, 12 पूर्णांक एक द्वितीयांश के उन्होंने अपूर्णांकों में बताया 25 बटे दो। यहां तक ख्याल में आया? अब आगे, अब अंतिम गुणहानि के निषेकों में सर्वत्र अंतिम निषेक को कम करने पर गुणहानि मात्र अंतिम निषेक प्राप्त होते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम गुणहानि के निषेकों में सर्वत्र अंतिम निषेक को कम करने पर गुणहानि मात्र अंतिम निषेक प्राप्त होते हैं। हाँ, 9 अंतिम निषेक है और उसको गुणहानि का प्रमाण किया 8 हुआ, 9 गुना 8। पुनः एक कम गुणहानि के संकलन मात्र, यानी 7 का संकलन कितना होता है? 28 होता है। इतने मात्र गोपुच्छ विशेष अधिक है। हाँ लिखा है ना। हाँ, ये संकलन कैसे निकालते हैं? देखो, एक कम गुणहानि ने 8 माइनस 1 7 आ गए, उसका संकलन धन कैसे निकालते हैं? 7 को 8 से गुणा करते हैं और भागाकार 2 का होता है, तो उसकी संख्या आएगी 28। इतने गोपुच्छ विशेष यानी इतने चय अधिक है, उसको भी अंतिम निषेक के प्रमाण से करते हैं। ये जो कम करने पर जो भाषांतर हुआ है ना, वो मुझे बराबर नहीं लग रहा है। देखो, प्राकृत पढ़ते संपदी, यानी अब चरिम गुणहानि निषेगेसु सवत्थ चरिम निषेगे अवनिदे गुणहानि मित्ता चरिम निषेगा लभंती अवनिदे, यानी मुझे लगता है कम करना नहीं हो सकता, उतने मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके प्रमाण से करेंगे ना। जैसे पहले में हमने क्या किया था, पहले निषेक के पहले गुणहानि का द्रव्य हम कैसे किया था? पहले 512 आठ बार लिए थे और उसमें से चय माइनस किया था। अब यहाँ क्या करना है? 9999 आठ बार लेना है और उसमें चय मिलाना है, यानी 7 का संकलन धन प्रमाण जो चय है वो उसमें मिलाना है। तो यहाँ जो लिखा है ना, अंतिम निषेक को कम करने पर ये जो है ठीक है, वो जो कुछ बता रहे हैं उसको पूरा पढ़ेंगे अभी हम। नहीं, प्रमाण के करने पर नहीं होगा, ठीक है। अभी पहले में पहले वो उसकी भाषा में हम पढ़ेंगे ना, यानी 9 के प्रमाण से अभी हम देखते हैं तो कितने हो गए, 9 बार निषेक लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंतिम गुणहानि ये पूरी। तो उसमें पहले में पहले 9 से प्रमाण करने पर कितना होगा उसको ले, 9 × 8 9 गुना 8। अब ये जो एक्स्ट्रा जो बाजू से चय है दूसरे निषेक से लेकर जो कुछ बढ़ेगा उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो पूरा अंतिम गुणहानि का द्रव्य आएगा। तो इसके लिए अभी कहते हैं कितने गोपुच्छ विशेष अधिक होंगे, 28 गोपुच्छ विशेष अधिक है। उसको भी अंतिम निषेक के प्रमाण से करते हैं। यथा अंतिम निषेक के प्रमाण से करने करते हैं ने 28 आ गए उसको अंतिम निषेक उसमें कितने बनेंगे नौ के ऐसी वहां ऐड करेंगे उसमें फिर हाँ अभी इसको समझाते यथा एक गोपुच्छ विशेष को ग्रहण कर उसमें एक कम गुणहानी मात्र गोपुच्छ विशेषों को मिलाने पर गुणहानी मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं यानी आठ गोपुच्छ विशेषों का लेंगे तो एक गुणहानी गोपुच्छ विशेष हुए आठ चयों को लेंगे आठ बार चयों को लेना है तो गुणहानी इतने चय हो गए बराबर चय की 28 चय अपने पास है वो साथ में डालना है अभी ये गणित समझा रहे एक गुणहानी मात्र चय ने आठ चय ये बात बता रहे इस प्रकार सबका मूल और अग्र को जोड़कर समीकरण करना चाहिए इस प्रकार करने पर एक कम गुणहानी के अर्धभाग मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं हमारे पास 28 चय है उसको गुणहानी के प्रमाण से करने पर गुणहानी ने आठ आठ का एक एक ग्रुप करने पर क्या होगा 8 त्रिक 24 और आधे रहेंगे यानी तीन बार पूरे आठ आएंगे और एक आधा रह गया तो कहते हैं एक कम गुणहानी के अर्धभाग मात्र हाँ गोपुच्छ विशेष होते हैं गुणहानी के अर्धभाग प्रमाण गोपुच्छ विशेषों में से दो कम गुणहानी के अर्धभाग मात्र गोपुच्छ विशेषों को ग्रहण कर उनमें से एक एक गोपुच्छ विशेष को दो कम गुणहानी के अर्धभाग मात्र गोपुच्छ पुंजों में मिलाने पर यानी निषेकों में मिलाने पर दो कम गुणहानी के अर्धभाग मात्र अंतिम निषेक होते हैं यह अंतिम निषेक नौ की बात चल रही है फिर इसको पढ़ते हैं दूसरी लाइन से गुणहानी के अर्धभाग प्रमाण गोपुच्छ विशेषों में से ये जो चार है ना वहां पर उनमें से दो कम गुणहानी के अर्धभाग मात्र गोपुच्छ विशेषों को ग्रहण कर उनमें से एक एक गोपुच्छ विशेष को दो कम गुणहानी के अर्धभाग मात्र गोपुच्छ पुंजों में मिलाने पर दो कम गुणहानी के अर्धभाग मात्र अंतिम निषेक होते हैं ये अंतिम निषेक को बढ़ा दिया उन्होंने देखो ये जो है चार है ना चार में से क्या करना उसमें से एक एक निकाल कर अभी ये आठ आठ में डालेंगे पुनः एक अधिक गुणहानी के बराबर गोपुच्छ विशेषों में एक अधिक गुणहानी के बराबर गोपुच्छ विशेषों में यदि एक अंतिम निषेक पाया जाता है ये क्या ये समझ में है एक अधिक गुणहानी ने नौ
चार को तीन के निकाल के एक में मिला दिया
हाँ
तो हो गए
हाँ
तो
एक बच गया एक अधिक गुणहानी के बराबर गोपुच्छ विशेषों में यदि एक अंतिम निषेक पाया जाता है यहाँ का गोपुच्छ विशेष कितना है एक ही है अंतिम गुणहानी का तो एक अधिक गुणहानी यानी नौ हो गए ना गुणहानी आठ की है उसमें एक मिला है तो नौ तो इतने गोपुच्छ विशेषों में यदि एक अंतिम निषेक पाया जाता है तो बचे हुए एक गोपुच्छ विशेष में क्या पाया जाएगा इस प्रकार सदृश का अपनयन करके प्रमाण से इच्छा को अपवर्तित करने पर एक का असंख्यात्वा भाग आता है 3.1 नवमांश। ये अपनी भाषा में 28 को 9 से भाग दो ना डायरेक्ट, 28/9 करो। क्यों? क्योंकि अंतिम निषेक 9 का है और यहाँ का चय एक एक का है 28, तो 28 में से 9 चय लेंगे तो एक अंतिम निषेक होता है, तो 9 का एक अंतिम निषेक, तो 28 में से कितने अंतिम निषेक हो गए? 9 × 3 = 27 और 1 नवमांश, 28 में 1, ये 9 में 1, तो 28 में कितने? 1 का असंख्यात्व भाग आता है 1 नवमांश आता है, तो 3.1 नवमांश इसे गुणहानि मात्र अंतिम निषेकों में मिलाने पर, ये तो चय की बात आई ना। देखो पहले हमने क्या किया था, गुणहानि मात्र अंतिम निषेक बनाए थे, ये जो बीच में बताए 9, 9, 9, 8 बार लिए, 9×8 = 72 हो गए। अब उसमें चय की टोटल निकाली थी वो 28 आ गई, तो 28 में 9 के कितने निषेक बनेंगे? 3.1 नवमांश, और मूल में कितने देखे हमने? 9×8 = 72 देखे थे, उसमें ये मिलाने पड़ेंगे। तो इसे गुणहानि मात्र अंतिम निषेकों में मिलाने पर कुछ कम 1.5 गुणहानि मात्र अंतिम निषेक होते हैं। अभी अंतिम निषेक हमने पहले कितने देखे थे? गुणहानि मात्र, यानी 8 बार लिए थे अंतिम निषेक, और यहाँ अंतिम निषेक कितने मिले? 3.1 नवमांश, तो 8 + 3.1 नवमांश, तो 11.1 नवमांश। एनीवेयर वहाँ हमने प्रथम निषेक के प्रमाण से किया था तो चय को घटाया था, अब अंतिम निषेक के प्रमाण से किया तो चय बढ़ाना पड़ेगा। अंतिम निषेक की बात की ना यहाँ पर, उसके प्रमाण से किया है। अभी हम पूरा पढ़ेंगे ना, पूरा पढ़ेंगे तो सही, यानी पहले हमने 72 निकाले थे है ना, 9×8 किए थे, उन्होंने डायरेक्ट उसके कुछ किया नहीं है। ऐसा भी अगर करेंगे 72 + 28 मिल गए, 100 तो टोटल आ गई, तो ये 100 टोटल अंत्य गुणहानि के भाषा में अगर हम बोलेंगे निषेक के, तो कितने निषेक होते हैं? तो 100 को डायरेक्ट 9 से भाग देंगे, इतने हो जाएगी ना, तो प्रमाण तो वही आना चाहिए 100/, तो ये 11.1 नवमांश। तो इसे डायरेक्ट निकालने के पहले ये पूरा उन्होंने प्रोसेस बताया कैसे निकालना। यह अंतिम निषेक की अपेक्षा कुछ कम 1.5 गुणहानि है, और प्रथम निषेक की अपेक्षा कुछ अधिक साधिक 1.5 गुणहानि देखा था प्रथम निषेक, क्योंकि वहां चय घटता है और यहाँ चय बढ़ता है। देखो इसको इसी प्रकार स्थापित करके पश्चात अन्योन्य अभ्यस्त राशि का विरलन करके प्रथम निषेक को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति गोपुच्छ विशेष से हीन अंतिम निषेक प्राप्त होता है। पश्चात नीचे गुणहानि का विरलन करके ऊपर एक विरलन के प्रति प्राप्त द्रव्य को देकर समीकरण करके परिहीन रूपों को त्रैराशिक क्रम से लाने पर वे 1 अधिक गुणहानि से अपवर्तित अन्योन्य अभ्यस्य राशि मात्र होते हैं। यहाँ ज्ञानावरणादिक का 1 का असंख्यात्वा भाग आता है क्योंकि उनकी अन्योन्य अभ्यस्य राशि से गुणहानि असंख्यात गुणी है। हाँ, और मोनिये के असंख्यात अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसकी गुणहानि से अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी पाई जाती है। ये यहाँ उत्तर आ गया, देखो ज्ञानावरणादि का एक का असंख्यात अभाग आता है, क्योंकि उनकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणहानि असंख्यात गुणी है। अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे आती है? नाना गुणहानि प्रमाण दुआ मानकर आपस में गुणा करो तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि आती है, बराबर। अब ज्ञानावरणादि के अन्योन्य अभ्यस्त राशि नाना गुणहानि से मोहनी की नाना गुणहानि बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके तो 30 कोड़ा कोड़ी में और उसकी 70 कोड़ा कोड़ी में, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण बहुत बढ़ेगा ना। उतनी बार दो संख्या लिखेंगे तो असंख्यात गुणा हो जाती है, अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणा हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानावरणादि भी अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणहानि असंख्यात गुणी है। और मोहनीय में देखो, अभी मोहनीय के असंख्यात अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसकी गुणहानि से अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी है। नहीं नहीं नहीं, गुणहानि सेम है, अन्योन्य अभ्यस्त राशि में फर्क पड़ेगा ना। देखो हम कोई तीन सप्तमोश वाली बात देखते हैं, या डायरेक्ट सात का और तीन का करेंगे। इसके साथ है नाना गुणहानि और उसकी तीन ही नाना गुणहानि है, तो दोनों के अन्य इसमें की तीन चतुर्थांश का तीन सप्तमोश का फर्क है, यहाँ तीन और वहां सात, तीन को सात, यानी डबल से थोड़ा ज्यादा है ना। अभी उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि करें तो तीन की अन्योन्य अभ्यस्त राशि करेंगे तो आठ आएगी, और सात बार करेंगे तो कितनी आएगी? हाँ हाँ, 13 नहीं, छह बार, देखो चार बार करते हैं तो हाँ 64 की हो जाएगी ना। सात बार करना है, आठ हुए, आठ दुनी 16 गुने 256 की आठ आती है, 256 का आधा करना 128 आ जाएगी। तो 8 को 128 कितना गुना हुआ देखो, भी 8 के 8 848 16 गुना हो गया। पहले ये डबल से थोड़ा ज्यादा था, 3 से 7 कितना था, तो 2 गुना ज्यादा था राउंड अबाउट। और अन्योन्य अभ्यस्त राशि में कितना फर्क पड़ा, 16 गुना का। हाँ, गुणहानि इन दोनों के बीच में, समझ में? देखो फिर से, अब अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालनी है तो मोहिनी की अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी है? हाँ, ये जो हमने 6 - 6 निकाला था वो उसका प्रमाण 14, हमने पनट्टी की अपेक्षा 14 निकाला था। और ज्ञानावरण की कितनी निकाली थी? तो तृतीय वर्गमूल के वैसे वो इन बिटवीन उसमें 6 निकाली थी, क्योंकि इन बिटवीन वो दो अर्धच्छेदों के बीच में थी, 4 और 8 के बीच वाली 6 थी, इसकी हुई 8 और उसकी हुई 6। नहीं, 14 और 6 और गुणहानि है 8 की, समझ में आया ना। तो गुणहानि 8 की है और ये है 4। अभी यहाँ तो डायरेक्ट इसकी कंपैरिजन नहीं होती, परंतु अन्योन्य अभ्यस्त राशि में असंख्यात गुणा का फर्क पड़ता है। 4 तो 14, 3 गुना ऐसा हो जाएगा, और अभी उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालेंगे तो 14 बार 2-2 गुना होगा, और ये 4 बार 2-2 गुना होगा, समझे? ये इतना जो फर्क पड़ता है, और गुणहानि इन बिटवीन है दोनों के, इन बिटवीन। अभी वहां हमारे 8 वाली गुणहानि नहीं माना, क्योंकि हमने मूल उदाहरण में तो नाना गुणहानि टोटल 6 ही मानी थी, उस प्रोपोर्शन में मानेंगे तो और कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञानावरणा की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से जो गुणहानि है वो असंख्यात गुना है, गुणहानि बहुत बड़ी है, असंख्यात गुना है। और मोहनीय की जो अन्य अभ्यस्त राशि है उससे गुणहानि असंख्यात्वा भाग है। इसलिए जो प्रश्न पूछा था ना, यहाँ ऐसा कैसा होगा, उसमें माइनस वाली बात कैसी आती, कुछ कम कैसे आया, उसमें तो साधिक कहा था, इसमें क्यों ऐसा लिखते हैं? देखो फिर यहाँ ये वाक्य फिर पढ़ते हैं हम अंतिम। नाना गुणहानि यानी नंबर ऑफ गुणहानि, एक गुणहानि
उसका संख्या भाग है।
हाँ, उससे गुणहानि असंख्यात गुण। ये 136 पृष्ठ पर जो लिखा है पहली लाइन में, ये ज्ञानावरणी की बात पहले की है कि ज्ञानावरणादिक दिक में बाकी सब ले लेना, क्योंकि आदिक में वो 30 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी और वो बाकी कम कम ही है। 135 से ये वाक्य शुरू हुआ था कि ज्ञानावरणादि में कि एक का असंख्यात भाग आता है, क्योंकि अन्य अन्य अभ्यस्त राशि से गुणहानि असंख्यात गुणी है। और कहते हैं मोहनीय के असंख्यात अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसकी गुणहानि से अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी पाई जाती है। इसको कम करके शेष से अंतिम निषेक को गुणित करने पर प्रथम निषेक होता है, इन्हें 512/9 हो गया। इतने मात्र अंतिम निषेक को यदि एक प्रथम निषेक प्राप्त होता है तो अंतिम गुणहानि संबंधी द्रव्य के कुछ कम डेढ़ गुणहानि मात्र अंतिम निषेकों का क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार से प्रमाण से इच्छा को अपवर्तित करने पर असंख्यात अंक प्राप्त होते हैं। उन्होंने ऐसा, हाँ ऐसा कहना है कि 512 के प्रमाण करने पर इतना आता है, तो अंतिम गुणहानि के द्रव्य के प्रमाण से करने पर कितना होगा? ये जो हमने ऊपर की संख्या निकाली थी ना 20, तो यह किस प्रमाण से जाना जाता है? कहते हैं यह प्रदेश विरचित अल्प बहुत्व से चाहिए। प्रदेश विरही अप्पा बहु गा दो, यानी प्रदेश विरचित अल्प बहुत्व से जाना जाता है। उन्होंने पहले भी रेफरेंस दिए थे ना इससे, उस अल्प बहुत्व से ये जाना जाता है। यथा, ये अल्प बहुत्व क्या बताए वहां, अंतिम निषेक सबसे स्तोक है। अपने उदाहरण में भी हमने सबसे स्तोक 9 देखा था, उससे प्रथम निषेक असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है। अभी हमने दिखा था ना, कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि उसका गुणकार है। उससे अंतिम गुणहानि का द्रव्य असंख्यात गुणा है, पूरा अंतिम गुणहानि का द्रव्य उससे असंख्यात गुणा है। हाँ, अपने में नहीं बैठेगा। और गुणकार क्या है? अन्योन्य अभ्यस्त राशि से अपवर्तित डेढ़ गुणहानि गुणकार है। डेढ़ गुणहानि को अन्योन्य अभ्यस्त राशि से भाग देना और उससे इसको गुणा करना, इससे असंख्यात अंकों का आगमन सिद्ध है। इन असंख्यात अंकों को अर्धरूप अधिक डेढ़ गुणहानि में से घटा देने पर ज्ञानावरणादि के प्रथम निषेक का भागहार कुछ कम डेढ़ गुणहानि मात्र हो जाता है। ये सारा क्यों, ये सारा बताने का प्रयोजन क्या है? मोहनीय में जो विधान किया था साधिक डेढ़ गुणहानि से, अब यहाँ कुछ कम डेढ़ गुणहानि से हुआ। अब डेढ़ गुणहानि का विरलन करके सब द्रव्य को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रथम निषेक प्राप्त होता है। डेढ़ गुणहानि का विरलन करना और एक एक के प्रति 512 देना तो पूरा द्रव्य हो गया ना, उसमें हमने बांट दिया उसमें। इसके नीचे निषेक भागहार का विरलन करके, निषेक भागहार कितना माना हमने, 16। दो गुणहानि को एक निषेक भागहार कहते हैं। तो उसके नीचे पहले हमने ऊपर किसको विरलन किया था, डेढ़ गुणहानि को, 12 को विरलन किया था, उसमें पूरा द्रव्य बांटा तो 512 आए। नीचे अभी 16 का विरलन करेंगे और उसमें वो 512 दे देंगे तो 6 आएगा। प्रत्येक एक के प्रति गोपू, देखो इसके नीचे निषेक भागहार का विरलन करके प्रथम निषेक को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है, यानी चय मिलता है। किसी भी गुणहानि का चय निकालना है तो प्रथम निषेक को दो गुणहानि से भाग देना है, उसको कहते हैं निषेक भागहार। उसको उपरिम विरलन मात्र प्रथम निषेकों में से कम कर देने पर डेढ़ गुणहानि मात्र द्वितीय निषेक रह जाते हैं। हमने क्या देखा था, 512 के 12 हमने निषेक किए थे, विरलन किया था 12 का, हर एक में 512 दिए थे। देखो ये 12 यानी डेढ़ गुणहानि इतने उसका विरलन किया, एक एक का 12 और उसमें पूरा द्रव्य समखंड से देना, यानी 512 दिया हर एक के प्रति। अब उसके बाद क्या किया, निषेक भागहार जो है 16 उतने एक लिखकर उसका विरलन किया ऐसा, तो ये 512 उसमें बांट दिए तो हर एक के प्रति 32 आए। ये 32 चय का प्रमाण आया। तो इतना चय हर एक में से कम करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगी, 480 रह जाएंगे। तो 480 कितने रह गए, 12 480, यानी डेढ़ गुणहानि मात्र द्वितीय निषेक रह गए। 12 है ना, ये हमने पूरा मान लिया। अभी उन्होंने डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम निषेक बताया था, उसके नीचे निषेक भागहार मात्र विरलन करके उसमें से एक उसमें बांट दिया तो अभी कितने रह गए हर एक के प्रति, नहीं वो इसमें से भी कम कर दिया ना, हर एक में से 32 कम कर दिए तो 480 रह गए 12, यानी डेढ़ गुणहानि मात्र द्वितीय निषेक रह गए। कहा 16 सब मिलकर 512 ही घटे ना। एक मिनट, डेढ़ गुने में तो जितने निषेक कम कर देने, उपरिम विरलन मात्र प्रथम निषेकों में से, नहीं वो खाली चय निकालने के लिए उसमें से निकाला ऐसा नहीं लेना है, ये निषेक चय का प्रमाण आया। अब इतने चय हर एक में से कम करेंगे तो 12 द्वितीय निषेक आ जाएंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ देना ऐसी बात नहीं, वो तो समझाने के लिए, चय निकालने के लिए ये मेथड है। अभी चय निकला अपना तो हर एक में से एक चय कम करेंगे तो 12 द्वितीय निषेक आ जाएंगे। अब 137 पृष्ठ पर पुनः डेढ़ गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेषों को द्वितीय निषेक के प्रमाण से करते हैं, यथा एक कम निषेक भागार मात्र गोपुच्छ विशेषों को, विशेषों का यदि एक द्वितीय निषेक प्राप्त होता है तो डेढ़ गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेषों का क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार सदृश का अपनयन करके प्रमाण से इच्छा को अपवर्तित करने पर एक का कुछ कम 3/4 भाग आता है। जैसे हमने हर एक में से 32 निकाले तो 32 12 आ गए, तो तो उसमें 480 वाले निषेय कितने बनेंगे? 480 बनने के लिए कितने बार 32 लेना पड़ेगा? 16 × 32 15 आ गए। पंद्रह आ गए अभी यहाँ पर। तो 15 ले लेंगे तो एक होगा, हमारे पास 12 ही है। ये पहले हमने ऐसे एक क्षेत्र की अपेक्षा इसको निकाला था, याद है? क्षेत्र के पीसेस करके निकाले थे, नहीं याद? देखो 512 और ऐसे 12, ये अपना आयत क्षेत्र है। पूरा द्रव्य का प्रमाण आता है ना, 512 × 12। अभी हमने एक निषेक 32 का निकाला, इसमें से 32 निकाले तो 480 रह गए। अब ये जो 32 निकाले हैं, 32 कितने हैं? 32 × 12 निकला है, तो इसके 15 पीसेस बना दो। तो 15 बार 32 को आपस में मिलाएंगे तो 480 हो जाएंगे, तो उसमें बढ़ेगा ना वो, तो कितना बढ़ेगा? 1.5 गुणानी तो ऑलरेडी थी, 12 थे, उसमें कुछ बढ़ा, 12 में से 15 कर दिए, 12 थे उसमें 15 बना दिए ना, हाँ 12/15 बढ़ा उसमें,
प्लस 12,
हाँ 12 + 12/15। तब यहाँ देखते समझाते, देखो पुनः 1.5 गुणानी मात्र गोपुच्छ विशेषों को द्वितीय निषेक के प्रमाण से करते हैं, यथा एक कम निषेक भागार मात्र गोपुच्छ विशेषों का यानी 15 का, यदि एक द्वितीय निषेक प्राप्त होता है 480 का, तो 1.5 गुणानी मात्र गोपुच्छ विशेषों का क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार सदृश का अपनयन करके प्रमाण से इच्छा को अपवर्तित करने पर एक का कुछ कम 3/4 भाग आता है। बारह के 15 पीसेस किए हमने, बारह 15 वर्ष आ गए ना। हाँ देखो ये उदाहरण में कहें थे गोपुच्छ विशेष 32, एक कम निषेक भागार 15। अब 1.5 गुणानी उन्होंने 12 नहीं लिए, वो साधिक 12 ले लिए, तो इसका उदाहरण में अलग हो जाएगा। तो 1.5 गुणानी 12 × 39/128 तो वो कम्स टू 1575/128। अब यहाँ त्रैराशिक किया उन्होंने, 1575/128 है ना, ये 12 के बदले उन्होंने ये फिगर ली, × 32 इसका एक निषेक हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 × 32/1 वो 105/128 आते हैं। ये जो संख्या आई, हमने 12/15 निकाला था, वो हमने 12 में मिला दिया था, परंतु यहाँ 39/128 एक्स्ट्रा लिया था ना, शादी की 1.5 गुणानी ली थी, तो उसमें ये प्रमाण मिलाना भी, उसको 1.5 गुणानी में मिला देने पर द्वितीय निषेक का भागार होता है, भागारण्य हमें द्वितीय निषेक के प्रमाण से करने पर उतना ही संख्या आएगी, तो उसकी संदृष्टि कितनी है, 1575 बटे 120। हाँ तो देखो हमारी कितनी थी, डेढ़ गुणानी कितनी थी, 12 पूर्णांक 39 128 यानी 1575 बटे 128 थी, उसमें और कितना मिला, 105 बटे 128 मिले, तो कितने हुए, 1680 बटे 128 हुए। एक सौ बीस क्या किया उन्होंने, ये तो वो लिखने गलत हुआ है, यहाँ भाग अगर जाएगा तो भी चार का भाग जाएगा ना, वो किया ना उन्होंने 105 बटे 128, तो उसकी संख्या 1680 बटे 128 आ गई, तो उसको हम देखो 1680 बटे 128, वो 16 का भी भाग जाएगा उसको, 16 8 28 80 16 16 16 16 85 105 बटे 8 आ गए। ये द्वितीय निषेक का भागहार कैसे ये बताया उन्होंने 120, ऊपर क्या है,
ऊपर भी यही है जो नीचे
है, ओह तस्य संदिट्ठि
1575
देखो ये क्या है, 1575 बटे 128 था ना, तो भागार बड़ा था, तो भागार कम कर दिया, वो ऊपर साधिक हो गया, उसकी संदृष्टि डायरेक्ट उन्होंने चेंज कर दी, संदृष्टि चेंज कर दी, ऊपर 1575 लिखा और नीचे 120 कर दिया, तो उसकी संख्या जो कुछ आएगी ऐसे। ये द्वितीय निषेक का भागार। अब तृतीय निषेक का भागार कहा जाता है, ये संदृष्टि में उन्होंने 1575 कायम रख के, देखो आगे भी देखते हैं ऊपर प्राकृत में 1575 कायम रखे, नीचे 112 किए, नीचे 64 किए, नीचे 32 किए, नीचे 16 किए, नीचे 8 किए, समझ में है ना, संदृष्टि उन्होंने बदल दिए डायरेक्ट। हाँ 1575 कांस्टेंट रखा और नीचे का जो छेद है वो कम करते गए, तो उसकी संख्या साधिक में बढ़ती जाएगी, ये डायरेक्ट उसकी संख्या नहीं है, वो तो द्वितीय निषेक का भागार इतना लाया उन्होंने। हाँ निषेक की वैल्यू कायम रखी उसने। अब तृतीय निषेक का भागार कहा जाता है, यह था निषेक भागहार के द्वितीय भाग का विरलन करके, निषेक भागहार कितना है 16, उसका द्वितीय भाग का विरलन करके प्रत्येक द्वितीय भाग है 8, प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर एक एक के प्रति दो दो गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं। निषेक भागहार का भाग देते हैं तो उसमें तो एक एक गोपुच्छ आता है, उसके आधे पर दे देंगे तो दो दो गोपुच्छ विशेष आएंगे, बात तो वही है। अभी दो देने हैं निषेक एक साथ, तृतीय निषेक का भागहार लाना है, अभी देना करो या कम करना कहो। 512 को तो कांस्टेंट रखा है, पहले 512 को 16 में विभाजित किया था तो एक एक गोपुच्छ विशेष आया था, अभी 512 को 8 में डिवाइड करना तो दो दो गोपुच्छ विशेष आएंगे, तो दो दो गोपुच्छ विशेष अभी वहां की संख्या आई, वह दो प्रक्षेप कहो या चय कहो, तो 512 में से दो चय घटाएंगे तो तृतीय निषेक आएगा। तो 12 बार 512 लिए है, उसमें से दो दो चय घटा देना, 64 घटा देना, यानी 480 में से 32 और कम करना, उसके बदले 512 में से ही 32 और 32 64 कम किए। इसको ऊपरी विरलन के प्रथम निषेकों में से कम करने पर यह अधिक द्रव्य होता है। निषेक भागहार के एक कम अर्ध भाग मात्र विशेषों का यदि एक तृतीय निषेक प्राप्त होता है, निषेक भागहार का एक कम अर्ध भाग इतने विशेषों का यदि, अभी हमने हमारे पास विशेष कितने हैं, 64 का एक विशेष है, और यहाँ का तृतीय निषेक कितने का है, 448 है, तो 448 संख्या निकलने के लिए 64 को कितनी बार निकल लेना पड़ेगा, 7.5 लिए क्या, 7.5 64 × 768 आते हैं, 1 अर्ध भाग मात्र विशेषों का, अच्छा, मैंने पहले एक कम किया, मैं एक कम अर्ध भाग, हाँ 7 हो जाएगा, अर्ध भाग यानी 8 में से एक कम किया, तो 7 भाग मात्र विशेषों का यदि एक तृतीय निषेक प्राप्त होता है, यानी 7 × 64 का एक तृतीय निषेक प्राप्त होने से 448 प्राप्त होते, तो 1.5 गुणानी मात्र दो दो विशेषों का क्या प्राप्त होगा, हर एक में से दो दो निकाले ना हमने, तो उसमें और कितने तृतीय निषेक बनेंगे, ऐसा संख्या निकालनी है हमें। 1.5 गुणानी में अभी वो 12 पूर्णांक 39 128 वो ले लेना, खाली 12 नहीं लेना। इस प्रकार भाग को ग्रहण कर लब्ध में मिलाने पर तृतीय निषेक भागहार हो जाता है। यानी वो 1575 कायम रखा और उसमें भागार उन्होंने कम कर दिया, 112 कर दिया उसकी संदृष्टि। देखो यहाँ वो समझाते हैं, 1575 × 64/128 और डिवाइडेड बाय 7 × 64/1, क्योंकि इतने में 7 चयों में एक मिलता है तो इतने में कितना मिलेगा, तो 1575 × 64/128 × 1/7 × 64, इसकी संख्या थी 225/128, वो मूल में मिला देंगे तो 18/128 और उसी का यहाँ संदृष्टि बना दी उन्होंने, 1575/112, ये तृतीय निषेक का भागार होता है। इस प्रकार प्रथम गुणहानि के अंतिम निषेक के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए, पहले गुणहानि की बात यहाँ बता दें। अब पुनः पूर्व विरलन को दुगुना कर द्वितीय गुणानि, पूर्व विरलन को दुगुना कर विरलन करके सब द्रव्य को समखंड कर देने पर द्वितीय गुणानि का प्रथम निषेक होता है। पहले हमने डेढ़ गुणहानि में विरल अंक कर दिया था ना, 512 कितने बार लिखा था हमने, डेढ़ गुणहानि 12 पूर्णांक 39 128 अंश। अभी हम 12 देखेंगे तो अभी विरलन डबल हो जाएगा और पूरा द्रव्य देंगे तो हर एक के प्रति 512 के बदले 256 आएंगे। तो पुनः पूर्व विरलन को दुगुना कर विरलन करके सब द्रव्य को समखंड कर देने पर द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक होता है, ये 256 हो जाएगा। शेष का कथन जानकर करना चाहिए। तृतीय गुणहानि के प्रथम निषेक का भागहार पूर्व भागहार से चौगुना है। हाँ, पहले हमारा 128 आया था ना, 1575 बटे
128,
हाँ अब यहाँ 32 आ गए। उदाहरण देखो देखो, गुणहानि में तो दो गुना चौगुना ऐसा होगा या एक एक निषेक के प्रति थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। देखो 1575 पहले कितना था, 120 था, 128 का 120 था द्वितीय निषेक में, फिर 120 का कम होके 112 हुआ। वो तो प्रति निषेक की बात थी, अब गुणहानि के पहले निषेक से दूसरे गुणहानि के पहले निषेक पर आ गए हम डायरेक्ट। तो 1575 बटे 128 था, हाँ तो वो 1575 बटे चौगुना हो गया ना। हाँ 64 हुआ था, दूसरे गुणहानि में 64 हुआ था। अब ये उदाहरण पूर्व भागहार, ये 128 दिख नहीं रहा, बराबर 1575 बटे 128, नीचे 128 करना बराबर। अभी उसको डायरेक्ट चौगुना किया तो 1575 बटे 32 आ गए। ये शेष का जानकर कथन करना चाहिए ना, उसमें वो तो 1575 बटे 64 उसने आ गया था इसलिए डायरेक्ट उतना ही बता दिया। ये उदाहरण में हमने देखा था अभी चौगुना करने पर 1575 बटे 32 आ गए। अब चतुर्थ गुणहानि के प्रथम निषेक का भागहार पूर्व भागहार से 8 गुना है, 3 आगे बढ़े ना तो 8 गुना हो गया, 1575 बटे 16। ये 8 गुना कैसे आए, नीचे 128 था, ऊपर 8 से गुणा किया तो हम उसको 16 आ गया उसके नीचे। पंचम गुणहानि के प्रथम निषेक का भागहार पूर्व भागहार से 16 गुना है, ये 1575 बटे 8 आ गए। इस प्रकार असंख्यात गुणहानियां जाकर अंतिम गुणहानि के प्रथम निषेक का भागहार कहा जाता है। एक कम नाना गुणहानि शलाकाओं का विरलन करके दुगुना कर, हमने यही बात की थी ना, जितने गुणहानियां आगे गए उतनी बार दो संख्या लिखकर गुणा किया था, दुगुना कर जो अन्योन्य अत्योन्य हुआ है, अन्योन्याभ्यस्त राशि उत्पन्न हो, उससे गुणित डेढ़ गुणहानियों का विरलन करके सब द्रव्य को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति अंतिम गुणहानी का प्रथम निषेक प्राप्त होता है। उसके भागार की संदृष्टि 1575/4 आ गई। उदाहरण, एक कम नाना गुणहानी 5, क्योंकि हमारी टोटल गुणहानी 6 थी, अंतिम गुणहानी 6 थी, 5 गुणहानी आगे गए ना। अब 5 की अनन्य अभ्यस्त राशि निकालना है तो 32 आ जाएगी। 5 बार 2-2 आपस में गुणा करना, 4 बार करते तो 16 आते, 16 दूनी और 32 हो जाएगा। तो 1575/128 गुना 32, वो 1575/4 आते हैं। ये अंतिम गुणहानि के प्रथम निषेक का भागहार आएगा। इस संख्या से टोटल संख्या को भाग देंगे तो वहां के निषेक का प्रमाण आ जाता है। पुनः तदनंतर द्वितीय निषेक के भागहार को कहते समय पूर्व विरलन के नीचे निषेक भागहार का विलन करके प्रथम निषेक को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है। वहां का गोपुच्छ विशेष आएगा। इस प्रमाण से उपरिम विरलन के प्रति प्राप्त द्रव्य में से गोपुच्छ विशेषों को कम करने पर वह अधिक द्रव्य होता है। इसको उसके प्रमाण से करके अधिक द्रव्य के विरलन रूपों की उत्पत्ति कहते हैं। यथा एक कम निषेक भागहार मात्र विशेषों में यदि एक प्रक्षेप शलाका प्राप्त होती है तो उपरिम विरलन मात्र विशेषों में क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध हो उसको उसी पूर्व विरलन राशि में मिला देने पर भागहार होता है, वो 6315 आ गया। देखो अभी जो ऊपर बताया था ना, एक कम निषेक भागहार यानी 15 और उपरिम विरलन था 6300/16। उसमें विरलन कर दिया था उसका तो 6300/16 भाग दिया 15 का, यानी उल्टा करके गुणा किया, 1/15 कर दिया, ये 420/16 आ गए। तो ओरिजिनल में उसको मिला दिया तो 6720/16 और उसी को 6300/15 अंतिम गुणहानि के द्वितीय निषेक का भागहार है। इस प्रकार अंतिम निषेक भागहार का क्रम ले जाना चाहिए, भागहार तक चाहिए ना। कहाँ गया ऊपर क्या लिखा? एवं नेदमम जाव चरिम निषेओत्ति। इस प्रकार अंतिम निषेक तक ले जाना चाहिए। चाहिए निषेक भागहार है ना, वो फिर 16 हो जाएगा। क्या अंतिम निषेक के भागहार तक क्रम ले जाना चाहिए। द्वितीय निषेक का भागहार लिखा ना, वैसे अंतिम निषेक के भागहार तक क्रम ले जाना चाहिए। इन्हें प्रति निषेक भागहार बढ़ता जाएगा और गुणहानि गुणहानि प्रति आधा आधा होता जाएगा। द्रव्य डबल होता है, द्रव्य जहां आधा होता है यहां भागहार डबल होगा। ऊपर की ओर से देखेंगे तो डबल होता है, नीचे की ओर से ऊपर चले जाएंगे तो द्रव्य आधा आधा होता है तो भागहार डबल डबल होगा। इसीलिए उन्होंने वो 1575 कायम करके नीचे का ही वो हाँ आधा आधा किया, वो भागार का भागाकर अधिक किया। अब अंतिम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र काल से अपहृत होता है, ये बतलाते हैं। ये तो पहले बता आए हैं, फिर दोबारा ये बता रहे हैं। हम ये निकाल के देखा था, अंगुल का असंख्यातवा भाग का प्रमाण कितना है? हाँ, असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, यानी असंख्यात बार वो 20 कोड़ा कोड़ी सा कर देने। यथा अंतिम गुणहानि के द्रव्य को अंतिम निषेक के प्रमाण से करने पर एक का असंख्यातवा भाग अधिक, एक कम डेढ़ गुणाने मात्र अंतिम निषेक होते हैं, उसकी संदृष्टि 11 पूर्णांक 1 नमो। शी अभी निकाल के दिखाया था उन्होंने, अंतिम निषेक 8 बार ले लो, उसमें वो चय वाला मिला दो वगैरह वगैरह। अब अंतिम गुणहानि के द्रव्य से लेकर शेष गुणहानियों का द्रव्य प्रथम गुणहानि के द्रव्य के प्राप्त होने तक दूना दूना होता जाता है। ये तो आसान है, अभी पूरा द्रव्य लिया, अंत की पूरी गुणहानि का द्रव्य कितना है उसकी ली बात, पूरा गुणहानि का लिया ना, 9 से लेकर 16 तक की टोटल। इतनी बार अंतिम निषेक, अंतिम निषेक के प्रमाण से, पहले पैराग्राफ आप पढ़ो क्या है उसमें। उतनी बार अंतिम निषेक लेना, उसको मल्टीप्लाई करना अंतिम निषेक के संख्या से, तो टोटल द्रव्य 6300 जो हमने मान लिया था उतना आएगा। एक समय प्रबद्ध का प्रमाण आएगा, अंतिम निषेक मल्टीप्लाइड बाय अंगुल का संख्या का भाग इज इक्वल टू पूरा द्रव्य। उसके प्रमाण से करना है ना, उतनी बार उसको लेना। अब यहाँ लिखा ना 100, 200, 400, 800, 1600 और 3200, डबल डबल है। अंत की ओर से हम देखे हैं, क्योंकि अंतिम गुणहानि के द्रव्य को एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणित करने पर सब द्रव्य की उत्पत्ति होती है। अन्योन्य अभ्यस्त राशि 64 है, उसमें एक कम कर दो 63 आ जाएगा, तो 100 गुना 63 6300 सबकी टोटल हो जाती है। एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि का सब द्रव्यों में भाग देने पर अंतम गुणहानि का द्रव्य आता है। 6300 को एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि 63 का भाग देंगे तो डायरेक्ट अंतिम गुणहानि का 100 द्रव्य आ जाएगा। ये हमने सीखा था ना गोमरसार में, इसकी बात देखे। कुछ कम डेढ़ गुणहानि से एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि को गुणित कर सब द्रव्य में भाग देने पर अंतिम निषेक आता है। ये अलग अलग पद्धति से वो अभी लाने की ये विधि बताते हैं, क्योंकि अंतिम गुणहानि के द्रव्य में कुछ कम डेढ़ गुणहानि मात्र अंतिम निषेक पाए जाते हैं। ये पहले उन्होंने लाके दिखाया था। इसकी संदृष्टि 6300/9 यह भागहार अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, जो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी मात्र है। यह अभी ऊपर जो बताया था उन्होंने, अंतिम निषेक से सब द्रव्य को करने पर पूरा द्रव्य 6300 को अंतिम निषेक जो 9 है उससे भाग देंगे तो कितना होगा वो अंगुल का असंख्यातवे भाग। यथा नाना गुणहानि शलाकाओं से भाजित एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि का विरलन करके, नाना गुणहानि शलाका अपनी 6 है, उससे भाजित एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि 63 है, उसको एक कम नाना गुनहानी शला नहीं एक कम कर दिया यहाँ पर, उसको छः से भाग दिया, उसका विलन करके एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि को ही समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति नाना गुनहानियों की शलाकाओं का प्रमाण प्राप्त होता है। वही उसको भाग दो उसको मिला दो ऐसी बात है, पहले भाग दो फिर मल्टीप्लाई करो। देखो पहले क्या कहते हैं, 63 को 6 से भाग दो और उसको विरलन करो और फिर अन्योन्य एक कम अन्योन्य अभ्यस्य ने 63 को ही उसमें समखंड करके दे दो तो 6 आएगा ना प्रत्येक के प्रति। उनमें से एक अंक के प्रति प्राप्त राशि से डेढ़ गुणहानि को गुणित करने पर डेढ़ कर्म स्थिति उत्पन्न होती है। नाना गुणहानि शलाक अपनी 6 आई थी, अभी उसको डेढ़ गुणहानि को गुणित करेंगे 62 तो डेढ़ कर्म स्थिति उत्पन्न होती है। इसका 3/4 कर दो, चार के चार, चार 8 32, 18 3 56 कर्म स्थिति यानी कर्मों की टोटल स्थिति। जैसे ज्ञानावरणी में 30 कोड़ा कोड़ी है, मोहनीय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, उसको कर्म स्थिति कहते हैं। ये डेढ़ कर्म स्थिति उत्पन्न होती है। दो विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि से डेढ़ गुणहानि को गुणित करने पर 3 कर्म स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये सारी टोटल कर्म स्थिति कितनी है अपनी भाषा में, तो 6 गुणहानियां है ना, गुणहानियों में बताया उन्होंने, अभी उसी को उन्होंने फिर डेढ़ गुना कर दिया। देखो एक कर्म स्थिति में 6 गुणहानि है, 6 नाना गुणहानि है ना, उसमें नाना गुणहानि का प्रमाण 6 है। हाँ तो उसको डेढ़ गुणहानि से गुणा किया तो डेढ़ कर्म स्थिति बन जाएगी। 6 गुणहानियों की एक कर्म स्थिति, 6 गुणहानियों की एक कर्म स्थिति है तो डेढ़ गुणा, हाँ हाँ 48 थी अपनी तो 72 हो गए। 6 को डेढ़ गुणहानि से गुणित किया, 6 गुणहानि थी पहले ऑलरेडी, उससे डेढ़ गुणहानि का प्रमाण 12 से गुणा किया, 72 हो गए। तो 6 की एक कर्म स्थिति है तो कर्म स्थिति को ही डेढ़ गुणहानि से गुणा किया तो डेढ़ कर्म स्थिति हो गई उसके। छह नाना गुणहानि क्या बताती है, कर्म स्थिति को ही तो बताती है, इसीलिए नाना गुणहानि 6 है, उसको डेढ़ गुणहानि से गुणित किया यानी डेढ़ से गुणित किया तो डेढ़ कर्म स्थिति हो गई ना। डेढ़ गुणहानि कहो ना आगे, वही बात करें, हाँ इसको फिर कल पढ़ेंगे। हाँ अभी 19 तारीख को 9 बजे जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।